हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। प्यार तुमसे जाहिर किया नहीं जाता और गुस्सा बात बात पर तुम्हारी इस छोटी सी नाक पर आकर बैठ जाता है। अर्णव ने धृति की छोटी सी फूली हुई नाक अपने अंगूठे और तर्जनी उंगली के बीच दबाते हुए हिला दिया। अगले ही पल धृति ने खींचते हुए उसके हाथ को झटका और अपनी नाक को अपनी हथेली से सहलाते हुए बुरा सा मुंह बनाने लगी। छूइए मत आप मुझे, इतनी तेज मेरी नाक दबा दी, बहुत बुरे हैं आप। खुद तो मिस्टर अक्कड़चंद बने घूमते रहते हैं, एटीट्यूड तो ऐसे दिखाते हैं जैसे कहीं के प्राइम मिनिस्टर हों, गुस्सा करते हैं तो मुंह से डायनासोर जैसे आग के गोले बरसाते हैं, और मुझे कह रही हैं कि मैं बात बात पर गुस्सा करती हूँ। अच्छा, अभी कौन गुस्सा कर रहा है? अर्णव ने हाथ बांधते हुए सख्त निगाहों से उसे देखा और भौं उछाल दी। उसका ये सवाल सुनकर धृति ने खींचते हुए अपनी नाक से कोड़ ली। गुस्सा अभी दिलाया किसने है मुझे? मैं तो एकदम शांत बैठी थी, आप ही को मुझे शांत देखकर चैन नहीं पड़ता। मैं अगर सुकून से बैठी हूँ तो आपके अंदर शरारत का कीड़ा कुलबुलाने लगता है। अपनी हरकतों से आप मुझे इरिटेट करके गुस्सा करने पर मजबूर करते हैं, और जब गुस्सा करती हूँ तो सुनाते भी मुझे ही हैं। बड़े ही चालाक हैं आप, बिल्कुल टीवी सीरियल की खड़ूस और चंट लोमड़ी सास जैसे हैं, जो बस अपनी बेचारी मासूम और शरीफ सी बहू के खिलाफ षड्यंत्र ही रचती रहती है। अर्णव धृति की बात सुनकर अचंभित सा आंखें फाड़े में से देखता ही रह गया। मैं पति हूँ तुम्हारा, और तुमने तो मुझे सीधे अपनी सास ही बना दिया, वो भी बोरिंग डेली सोप वाली वैम्प सास जो अपनी बहू का जीना हराम कर देती है। हाँ, आप वही हैं, भगवान बहुओं की जिंदगी हराम करने के लिए उन्हें जैसी सास देते हैं, गलती से उन्होंने मुझे वैसा पति दे दिया है, जबकि सास तो मेरी बहुत अच्छी है, धृति ने तपाक से जवाब दिया। और उसका ये जवाब सुनकर और उसके मुंह से अपनी इतनी तारीफ सुनकर अर्णव का मुंह हैरानी से खुल गया। धृति, अब ज्यादा हो रहा है तुम्हारा, अपने पति की इतनी बुराई करना भी ठीक नहीं है। अर्णव नाराजगी भरी नजरों से उसे घूरने लगा, जबकि धृति ने भी उसे घूरते हुए बुरा सा मुंह बना लिया। यहाँ सारा दिन एक साथ बिताने के बाद और एक दूसरे के साथ को खूब एंजॉय करने के बाद जब रात के वक्त वो दोनों साथ बैठे तो मजाक और अर्णव की शरारतों व छेड़छाड़ के कारण अर्णव और धृति का प्यार तकरार में बदल चुका था। तो दूसरी तरफ निहारिका अब तक मृणाल का इंतजार ही कर रही थी। सुबह गया था सो रात के 10 बजने को थे, पर उसकी कोई खबर ही नहीं थी। निहारिका कुश के पास थी, आज सारा दिन उसने उसको बहुत तंग किया था। निहारिका ने उसकी धृति से बात भी करवाई थी और वो उसके पास जाने को बिलख बिलख कर रो पड़ा था। बड़ी ही मुश्किल से निहारिका ने उसे संभाला था। धृति के पास जाने की जिद कर रहा था वो, और निहारिका के पास ही नहीं आ रहा था। उस वक्त कितना परेशान हो गई थी वो। एक पल को मन में ख्याल भी आया कि मृणाल को फ़ोन करके बुला ले, पर फिर उसके इस ख्याल को झटक दिया और खुद उसे समझाने और संभालने लगी। कुश को रोते देखकर धृति भी अपनी बेबसी पर रो पड़ी थी। कितनी कोशिशें की थी उसने भी कुश को समझाने की, उसको तो अर्णव ने दिलासा देकर संभाल लिया था, पर ये काम निहारिका के लिए चुनौती भरा था। इस वक्त कुश आराम से सो रहा था और निहारिका उसके पास लेटी उसके सर पर हाथ फेरते हुए जाने किन्हीं ख्यालों में खोई थी। उसके माथे पर कुछ सिलवटें उभरी थीं और चेहरे पर चिंता व परेशानी के भाव मौजूद थे। अचानक ही उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और आवाज़ से निहारिका चौंकते हुए अपने ख्यालों से बाहर आईं। नजरें अनायास ही आवाज़ की दिशा में घूम गईं और दरवाजे से अंदर आते मृणाल के चेहरे पर ठहर गईं, जिस पर थकान साफ झलक रही थी। निहारिका बेड से उतरी और कदम बढ़ाते हुए मृणाल के पास पहुंच गई। कैसा रहा तुम्हारा दिन? काफ़ी थके हुए से लग रहे हो, लगता है इन छुट्टियों की वजह से काम बढ़ गया है तुम्हारा, निहारिका ने बोलते हुए उसके ब्लेजर को उतार दिया और टाई की नॉट ढीली करते हुए निगाहें उसकी ओर उठाईं। मृणाल ने अपना लैपटॉप वाला बैग काउच पर रख दिया और निहारिका की कमर पर अपनी बांह लपेटते हुए उसके कंधे पर बिखरे खुले बालों में अपना चेहरा छुपा लिया। काफ़ी काम पेंडिंग है तो थक गया हूँ थोड़ा सा, निहारिका के खुले बालों और जिस्म से उठती खुशबू मृणाल की सांसों में घुलने लगी और एक अजीब सा सुकून उसके दिल में उतरने लगा। पहले फ्रेश तो हो जाओ, बेटर फील करोगे तुम, मैं तो यहीं हूँ तुम्हारे पास, निहारिका ने उसकी पीठ को अपनी हथेली से सहलाते हुए कहा। जवाब में मृणाल ने उसकी कमर पर अपनी बाहों की पकड़ को कस दी और गहरी सांस लेते हुए उसकी खुशबू को अपनी रूह में बसाने लगा। कुछ देर ऐसे ही रहो मेरे पास, मृणाल का ये आग्रह सुनकर इसके आगे निहारिका ने कुछ भी नहीं कहा। कुछ देर बाद मृणाल ने खुद ही उसे खुद से दूर किया और प्यार से उसके गाल को छूते हुए सवाल किया, तुम नाराज नहीं हो मुझसे? कायदे से होना तो चाहिए, पर लकीली नहीं हो नाराज तुमसे, थोड़ी सी थी भी, पर तुम्हारा थकान से भरा चेहरा देखकर वो नाराजगी भी खत्म हो गई। निहारिका ने उसके सीने को अपनी हथेली से सहलाते हुए जवाब दिया और मुस्कुरा दी। उसका ये जवाब सुनकर मृणाल के चेहरे पर संजीदगी के भाव उभर आए। सॉरी, आते ही मैंने काम शुरू कर दिया। सारे दिन में एक बार तुम्हें फोन करके तुम्हारा हालचाल तक नहीं पूछा, और कुश को भी सारा दिन तुम्हें अकेले संभालना पड़ा। आने में भी इतनी देर हो गई मुझे। इट्स ओके, पर कोशिश करना कि जितना वक्त घर पर रहो काम से दूर रहो, और अपना पूरा वक्त मेरे और कुश के साथ बिताओ। तुम्हारे ऑफिस में तो हम नहीं आएंगे तुम्हें डिस्टर्ब करने, तो घर पर भी काम नहीं आना चाहिए, वो फैमिली टाइम होना चाहिए। और आगे से जैसे बाकी एम्प्लॉयज का ऑफिस का टाइम होता है जिसके बाद वो घर चले जाते हैं, वैसे ही तुम भी इतनी देर तक वहां रुकने के जगह वक्त पर घर लौट आना। याद रखना, अब तुम्हारा एक परिवार है जो तुम्हारे वापसी की राह देखता है, एक वाइफ है जिसे सारे दिन की दूरियों के बाद कुछ वक्त अपने हस्बैंड के साथ बिताने की ख्वाहिश होती है, और एक 2 साल का बेटा भी है जो अपने डैड को ढूंढता है, और तुम्हारे वक्त पर हम दोनों का भी हक है। निहारिका बहुत ही नरमी और प्यार से उसे समझा रही थी। मृणाल ने उसकी बात खामोशी से सुनी, फिर प्यार से उसके गाल को सहलाते हुए बोला, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, और तुम ठीक कह रही हो। कुछ दिन थोड़ा एडजस्ट कर लो, इतने दिन यहाँ नहीं था तो थोड़ा पेंडिंग काम है। एक बात सब लाइन पर आ जाए फिर तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। वक्त पर घर लौट आया करूंगा और तुम्हारे और कुश के साथ वक्त भी बिताऊंगा। मृणाल का जवाब सुनकर निहारिका ने मुस्कुराते हुए सहमति में सर हिला दिया। मृणाल ने पल भर ठहरते हुए अगला सवाल किया, डिनर किया तुमने, और कुश ने तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं किया? मृणाल के चेहरे पर गंभीर भाव उभर आए थे और परेशानी निगाहें बेड पर लेटे कुश पर जा ठहरी थीं। निहारिका के चेहरे के भाव भी कुछ गंभीर हो गए। मैं तो तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रही थी, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कुश को संभालने की, उसकी जिद पर धृति से बात भी करवाई थी। धृति से बात करते हुए रोने भी लगा था और उसके बाद बहुत उदास था, उसके पास जाने की जिद भी कर रहा था। बहुत मुश्किल से मैंने उसका मन बहलाया, तुम्हारे आने से कुछ देर पहले ही उसे डिनर करवाकर सुलाया है। आदत छूटने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, धृति से इमोशनली बहुत अटैच्ड है वो, पर धीरे धीरे संभल जाएगा। फिर तुमने उसे सारा दिन अकेले संभाल लिया, दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। इतना आसान नहीं होता उसे संभालना। पर मुझे कभी कभी डर लगता है, क्या मैं कभी कुश के मन में वो जगह बना सकूंगी जो धृति ने बनाई है? क्या कभी वो दिल से मुझे अपनी मम्मा के रूप में स्वीकार कर सकेगा? अजीब सा डर इस वक्त उसकी आंखों में झलक रहा था। उसे यूं परेशान होते देखकर मृणाल ने सौम्य सी मुस्कान लबों पर सजाते हुए जवाब दिया,
बिल्कुल, सच्चे दिल से कोशिश करोगी तो ऐसा जरूर होगा। वैसे भी बच्चे सिर्फ प्यार की भाषा समझते हैं और प्यार ही मांगते हैं। जो उन्हें प्यार देगा, उनकी केयर करेगा, वो अपने आप ही उनसे जुड़ने लगते हैं, जैसे कुश कुछ ही दिनों में तुमसे जुड़ गया है। और तुम्हें उसके दिल में धृति की जगह नहीं लेनी है। जन्म के साथ से धृति ने उसे संभाला है, इसलिए उससे कुश का अलग ही रिश्ता है, एक अलग सा जुड़ाव है। तुम्हें तो एक अलग और बेहद ख़ास जगह बनानी है, जैसे तुमने मेरे दिल में बनाई है। और कुश को खुद को थोड़ा वक्त देना है, सब्र से काम लेना है। धीरे धीरे वो तुमसे इस कदर जुड़ जाएगा कि उसके मन में माँ के रूप में तुम्हारी छवि बस जाएगी। मृणाल ने उसे आश्वासन दिया था। निहारिका की चिंता कुछ कम हुई तो मृणाल ने बात बदलते हुए अगला सवाल किया, आज सारा दिन क्या किया तुमने? अपना नया घर देखा, कैसा लगा? कुछ बदलाव करवाने हैं तो मुझे बता देना। अब से इस घर को और मुझे व कुश को तुम्हें ही संभालना है, तो तुम जो और जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। मृणाल की ये बात सुनकर निहारिका अपनी सारी चिंता फिक्र भूलते हुए मुस्कुरा दी, नहीं, अभी तो मुझे इस घर में कुछ भी बदलाव करवाने की जरूरत महसूस नहीं हो रही। सब कुछ पहले ही बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है। आज मैंने कुश के साथ पूरा घर देखा, मुझे बहुत पसंद आया। पर 2 लोगों के हिसाब से ये घर बहुत बड़ा है, इतने बड़े घर में अकेले दिल लग जाता था तुम्हारा? रहता ही कितने देर था मैं यहाँ? बस रात गुजारनी होती थी, बाकी का सारा दिन तो ऑफिस में ही गुजरता था। कुश भी या तो ऑफिस में मेरे साथ रहता था या धृति और माधुरी के घर में उनके साथ। कई बार सुबह का नाश्ता, रात का डिनर भी वहीं उनके साथ हो जाता था, तो परिवार की कमी ज़्यादा महसूस नहीं होती थी। तब जल्दी से यहाँ आने का मन भी नहीं करता था, क्योंकि ये सन्नाटा और तन्हाई चुभती थी मुझे। पर मजबूरी थी तो रात गुजार लेता था किसी तरह। पर अब तुम आ गई हो तो ये सुनसान बंगला एक बार फिर घर लगने लगा है। अब खुद को यहाँ तन्हा नहीं महसूस करता। इस वीरानी में अब तुम्हारे होने का एहसास समा गया है। वो फीलिंग होती है ना किसी हमसफर के साथ होने वाली, बहुत सुकून पहुंचाती है, और अब मैं उस सुकून को महसूस करता हूं तो अच्छा लगता है मुझे। मैं तुम्हें शब्दों में नहीं बता सकता कि तुम्हारे आने से मेरी ज़िंदगी में कितना बड़ा बदलाव आया है और कितनी स्पेशल फीलिंग है ये कि तुम मेरे साथ हो। तुम्हें अपनी फीलिंग्स को शब्दों में जाहिर करने की ज़रूरत भी नहीं। आई नो कि इस वक्त तुम्हें कैसा महसूस हो रहा होगा। ये अकेलेपन की फीलिंग को मैंने भी महसूस किया है, वो भी बहुत करीब से। हालांकि मेरे पास मेरी फैमिली थी जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है, पर मेरी लाइफ में भी एक ऐसा फेज था जब मैंने खुद को सबसे दूर कर लिया था। बिल्कुल तन्हा हो गई थी मैं। बहुत कुछ था मेरे मन में जो मैं बयां करना चाहती थी, पर ऐसा कोई शख्स मेरे पास नहीं था जिससे मैं बेझिझक अपने दिल की बात कह सकूं। उस वक्त वो तन्हाई मुझे भी बहुत चुभती थी, इसलिए मैं समझ सकती हूं कि इस वक्त तुम्हें कैसा महसूस हो रहा होगा। एंड आई प्रॉमिस, जब तक मैं हूं, मैं दोबारा कभी तुम्हें इस दुनिया में अकेला नहीं फील करने दूंगी। दोनों एकटक एक दूसरे की निगाहों में झांक रहे थे। दिल में भावनाओं का ज्वार उठ रहा था। कुछ अजीब से एहसासों से उनका मन सराबोर था। लब खामोश थे पर धड़कनें शोर कर रही थीं। निहारिका की निगाहों की गहराइयों में डूबते हुए मृणाल ने उसकी गर्दन पर अपनी हथेली टिकाई, उंगलियों को उसके खुले बालों में उलझा लिया और उसके गाल को अपने अंगूठे से सहलाते हुए उसके चेहरे की ओर झुकने लगा। निहारिका ने अपनी बाहों को उसकी गर्दन के इर्द गिर्द लपेट दिया और बराबर उसकी निगाहों में देखती रही। देखते ही देखते दोनों के लब एक दूसरे से टकराने लगे और बहकती सांसें उनके चेहरे पर बिखरने लगीं। सीने में मौजूद बेचैन दिल में सुकून सा उतरा और इन लम्हों में दोनों एक दूसरे में खो गए।